તારીખ 11/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 471 અને 472 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 82
ચલતે હુએ પરિણામ મે જ્ઞાન સ્વયં કે ભી સ્વયં કે વેદન કો ભી ભીતર મે સાવધાન હો કર કે અને ભગવાન સે પ્રતીતિ સબ કુછ મે વિશ્વાસ આ જાતા હૈ પરમાર્થ કી મે જિસ પ્રસંગ કી મે વ્યક્ત કરતા હૂં પરમાર્થ કી સ્પષ્ટ અનુભવાંશ અનુભવાંશ મેને વેદન કે ક્યા ફરક હૈ વિચાર હૈ ઉસમે રાગ ઓર જ્ઞાન દો પર્યાય મે જ્ઞાન રાગ કા આધાર સે જ્ઞાન કરતા હૈ જ્ઞાન કા પર્યાય વિચાર જ્ઞાન મે વિચાર દશા મે રાગ કા આધાર સે પ્રવર્તિત હો રહા હૈ
જ્ઞાન રાગ નો આધાર હૈ
આધાર અનાદિ સે વહી વિચાર દશા કી સ્થિતિ હૈ અબ ક્યા હો રહા હૈ વિજ્ઞાન કે સાથ બાહ વાસન કે સાથ કે જ્ઞાન સ્વયં કા આધાર સે મેને રાગ સવિકલ્પ દશા હૈ વિચાર દશા હૈ ઉસમે જો રાગ હૈ ઉસકી ઉપેક્ષા કરકે ઉસકા આધાર છોડ કરકે સ્વયં કે આધાર સે પ્રવર્તિત હોતા હૈ તો અપના વેદન સે વો પૂરા અપના જ્ઞાન સમાન કો લક્ષ મે લે લેતા હૈ પહેચાન કર લેતા હૈ
સ્વતંત્ર મન
खाने की लकड़ी है उसको कसौटी पर घिसते हैं लकीर आती है कसौटी पर सोने की लकीर आई तो सैंपल है जो लकीर है वो क्या है उपयोग लकीर पर है तो कैसी है लक्ष्य में लकड़ी पूरी ऐसी है ऐसा आएगा
बराबर
कैसा काम होता है आप देखिए
बराबर
उपयोग लकीर पे है तो कितना लाइट मारती है सोने का जो तेज है वो कितना आता है पीलापन वो सोना नहीं है सोना ही सोना है पीला तो पुतल भी होता
है
जो सोने की जिसको पहचान है वो एक लकीर से पकड़ता है कि लकीर में सोना होता है ઉપયોગ લકીર પે ઓર લક્ષ્ય મે પૂરી લકીર
બહોત અચ્છી બાત
એસે જ્ઞાન વેદન કો ગ્રહણ કરતે હી પૂરા જ્ઞાન સ્વભાવ એસા એસા લક્ષ્ય મે આતા હૈ એસે ભી જ્ઞાન હોતા હૈ જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન કો વેદનભૂત જ્ઞાન કો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કો और उस वक्त ज्ञान के आधार से ज्ञान होता है तो अंतर्मुखता स्वसन्मुखता आ जाती है वेदन स्वयं वेदन वेदा जाता है वेदन स्वयं वेदा जाता है हो जाती है वेदन कभी परोक्ष होता नहीं तो प्रत्यक्षता क्या चीज है वही समझने में आती है पहचानने में आ जाती है कसाय के अभाव स्वरूप होने से શાંતિ આત્મ શાંતિ ક્યાં ચીજ હૈ આત્મા કા સુખ ક્યાં ચીજ હૈ ભી પહેચાન આતા જ્ઞાન કા રૂપ હિ સુખ મિલી સમજ મે આતા હૈ યે તો જ્ઞાન કે સુખ રૂપ હૈ બસ રૂપ સે પહેચાન હૈ મનુષ્ય તો મનુષ્ય ઉસકા રૂપ સે પહેચાન હોતી હૈ थोड़ा करके उधर ले जाने सुविधा यह है इसमें तो निरंतर विलीन चल रहा है। आवाज गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आते हैं, निरंतर प्रगति सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है। अंतरंग में वो प्रकाशमान है, वही प्रकाश है, और तो सब अंधेरा ही है, प्रकाश तो उतना ही है। तो इस प्रकाश को दिखलाते हैं, दर्शाते हैं जो हमें जो योग्य मुक्ति है उसको भीतर में अपने आप को वो कहते हैं। वैसे वो भीतर में देखता है, कहते हैं तो और कोशिश करके करता है भीतर में देखने की, और कोशिश करता है कोशिश करते हैं तो दिख ही जाता है,
जम जाता है।
और जिसको करना है उसको कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसको ये काम कर ही लेना है उसको प्रतिबंध कौन था। भीतर भीतर में तो अपने भाव के सिवाय कोई तो आड़ा आता नहीं, आ सकता नहीं।
अपनी खटा को से
अपने से अपने से अपने आप को गुप्त रहना कैसे हो सकता है वो तो प्रश्न करते हैं। तो हो सके ही नहीं, बन सकता ही नहीं, कितना जोर से बात कर रही है। हाँ गुप्त रह क्यों, उधर ही मुंह रखा है। हमारे एक समुद्र के किनारे पर कुछ खड़ा जाता है और उस पर पीठ रखता है, वो समुद्र की दिशा में ऐसे चौपाटी पर खड़े हुए हैं और हम मरीन लाइन पे हमारा मुख है, पर हम कहते तो इतना बड़ा समुद्र है हमको तो एक बूंद भी नहीं दिखती है। आप कहेंगे तो कितना पानी है समुद्र में, तो अगाध पानी है, बहुत बड़ा समुद्र है, सामने किनारा नहीं दिखे इतना बड़ा है। हाँ क्षितिज देखो तो कहीं भी जमीन नहीं देखते, पर मैं फिर तो खड़ा हूँ और प्रश्न करो कि एक पानी की बूंद भी नहीं दिखती है, अगाध पानी क्या पानी की बूंद भी नहीं दिखाई देती, कहाँ से दिखाई देती है दिखाता उल्टा सुनता है। उधर है तो प्रकाश नहीं दिखता है, जो इधर आया सम्मुख हुआ तो परमात्मा तो कारण परमात्मा के रूप में खड़ा है, वो थकता नहीं कभी, खड़ा ही रहता है, अनंत काल से खड़ा है, अनंत काल पर्यंत खड़ा ही रहने वाला है, वो तो थकता ही नहीं।
और उसको ऑटोमेटिक अरेंजमेंट चालू है,
परमानेंट भी चालू है। और परमात्मा विपराग होता है, उसका अनादर करो आदर करो उसको कोई लेना देना नहीं है। हमारे परमात्मा का अनादर किया, उसका आदर नहीं किया, फिर भी वो चले नहीं गए, खड़े ही हैं। ढांचे में से निकलना हमेशा हमेशा कठिन पड़ता है, लेकिन जिसका उत्साहित वीर्य है, उत्साहित वीर्यवान तत्व पाने का मुख्य अधिकारी है, जिसको अपना काम करने का उत्साह अंतर से आता है। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एक मेरा काम करना है, इससे ही मेरा प्रयोजन है, दूसरा कोई मुझे प्रयोजन नहीं दे, बस उनको उनके लिए सुगम है, सरल है, सत सुगम है, सत सरल है, सर्वत्र इसकी प्राप्ति होती है, इसके लिए मैं
प्रार्थना करते हैं।
आत्मा है, आत्मा प्रकट है, अत्यंत प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है इतना ही नहीं, अत्यंत प्रत्यक्ष है, क्योंकि स्वसंवेदन अनुभव गोचर है। सत्य दस में लिया
आगे
आत्मा है, आत्मा प्रकट है, अत्यंत प्रत्यक्ष है, क्यों स्वसंवेदन अनुभव गोचर है।
ये वाक्य रोज स्मरण में रहता है, ये वाक्य के आधार से मैं आगे
कौन कितना सुंदर है, टुकड़ा तो उतना है छोटा,
एकदम स्पष्ट हो
गया। उसका टोन कितना बढ़िया
है,
बहुत सुंदर टोन है, ध्वनि कितना निकलता है। वो क्या करते थे, आत्मा को देखने के लिए प्रयास करते हैं, कैसा होगा आत्मा, आत्मा का दर्शन कैसा होता है। लेकिन अरूपी पदार्थ थोड़ा देखा जाता है, उसका अस्तित्व है वो वेदन गोचर होता है, वेदन से अस्तित्व मालूम पड़ता है कि मैं हूँ, जहाँ मेरा ज्ञान वेदन है वहीं मैं हूँ, वेदन से वो ग्रहण होता है अस्तित्व ग्रहण, उससे कोई भाव भाषण कहते हैं। बात अब कुछ प्रश्न रहता है इसमें, वो जो विषय तो बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी नहीं आती हो तो उसके लिए प्रश्न हो सकता है, क्लैरिटी आती है तो फिर प्रयास का ही सवाल है। समझ में अगर क्लैरिटी आती है तो फिर उसको भीतर में भी देखने का ही सवाल है,
प्रोसेस की बात ही बात,
क्लैरिटी नहीं है तो प्रश्न हो सकता है। जैसे आपका प्रश्न था कि भाव बीज ज्ञान कैसे दिया जाता है, तो हमने जो बात कही वो तो बिल्कुल क्लियर लगती है या कुछ अनक्लियर लगती है, इसका नाम क्लैरिटी नहीं। क्लियर लगती है तो भीतर में तो साधन तो मौजूद है, तो उनका स्वर का प्रयास चालू होगा। क्लियर नहीं आता है समझ में तो प्रश्न हो सकता है, फिर ऐसा नहीं समझ में आता है इस प्रकार से, जैसा भी अनक्लियर हो वहां से जिज्ञासा उसे भी। तो ऐसे जो अध्यात्म का जो सूक्ष्म विषय होता है, ऐसे प्रकरण में प्रश्न ही उत्तर को खींच के ले आता है,
बहुत अच्छी बात है।
तो प्रकरण ऐसा है कि जिसका इस विषय में जितनी सूक्ष्मता है, जिसका इनका खुद का प्रयास होता है, उसमें जो सूक्ष्मता है उसमें से जहां भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है वहां से वो जिज्ञासा उठती है, तो टू डी पॉइंट उत्तर को खींच के ले आएगा, ये प्रश्न ही इस चीज को बात ले आएगा। ऐसा मिलना ही चाहिए, बात तो ऐसी बल में ऐसी बात है। जब कोई मोक्ष हो अपने आत्ममार्ग में चलने के लिए प्रयाण करता है, तब जो जो उनकी योग्यता में रहा हुआ प्रतिबंध है वो आप सामने आने लगता है। आप नहीं बता रहे हैं तो मैं बताता हूं, तो इसके सामने लड़ाई करनी पड़ती है कि अब मुझे किसी का काम
नहीं है।
आगे तुमसे प्रीत किया था, हमारा रस भी हुआ था, अब जो है हम अवधूत होकर के निकल गए हैं,
वन में एक
तो अब किसी से काम हमारा
नहीं।
तो जो भी आएगा वो जो भी योग्यता में पड़ा होगा ये परिणाम सामने आएगा,
आएगा।
आने दो, अब हम तैयार हैं। ऐसे थोड़ा देर सबेर होने का कारण बनता है, लेकिन उस तरह से फिर ये जहां जहां हमने रस लिया हो और रस लेने के कारण से जैसी भी योग्यता कारण रूप पड़ी हो उसका काल पक जाएगा, वो बाहर आने लगेगी। अब जो है कि हमें हमारा प्रयोजन से ही मतलब है, तो बिना प्रयोजन वाली कोई भी चीज से हमें गौण होना, उपेक्षा होना, ये बहुत आसान बात हो जाएगी। कोई आपत्ति नहीं, कोई विडंबना नहीं। कोई बांधी सकते, छुटवाना कामी ने कोई बांधी सके नहीं। कामना छूटने की हो उसको कौन बांधे, और जिसको स्वयं को बंधाना है उसको कोई छुड़ा सकते नहीं। तीर्थंकर भी उसको नहीं छुड़ा सकता।
वो पुरुषार्थ की साइड एकदम स्वतंत्र बताए, पुरुषार्थ की साइड
तो वस्तु ऐसी है के चैतन्य विरिका उछाला आए बिना
नहीं।
ऐसे वस्तु ऐसे है। देखो ने, सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक एक अंश भी क्यों विचलित नहीं होते हैं? लोकालोक उसके ज्ञान में प्रतिबिंब होते हैं, एक अंश भी ज्ञान का विचलित क्यों नहीं होता है? लोकालोक से भी अद्भुत ऐसी कौन सी चीज इसके उपयोग में है कि लोकालोक की कोई चीज उसको एक अंश और एक समय के लिए विचलित नहीं कर सकता? एक समय के लिए भी नहीं और एक अंश भी नहीं इसका उपयोग का। अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है इसके ज्ञान में, एक प्रतिच्छेद भी नहीं और एक समय के लिए भी नहीं। क्यों ऐसा? क्यों? वस्तु ऐसी है इसलिए, आत्मा ऐसा है इसलिए। महावासन बात तो गुण चढ़ जाती है, एक दफे भाषित हो गया साक्षात परमात्मा, फिर तो इसकी धुन चढ़ जाएगी। ये तो कोई जैसे कुछ दिखता ही नहीं, दिखता होने पर भी
नहीं
दिखता ही
नहीं।
क्यों? तो अनंत काल में कोई ऐसी अपूर्व चीज तो दिखी नहीं। और स्वयं है अनंत सुख का भंडार, अनंत सुख का धाम भी स्वयं, अनंत ज्ञान का धाम भी स्वयं, अनंत अनंत गुणों का निधान भरा है। तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ जगत भी कुछ नहीं है, पूरा जगत कुछ नहीं है।
श्रीमती का एक वचन आता है कि सारा जगत हमारे ज्ञान में है,
परमाणु की कीमत कृपालु देव ने सुभाग भाई को इधर के पहाड़ पर ये बीज ज्ञान दिया है।
इधर के पहाड़
पर उनका लक्ष्य तो कृपालु देव के प्रति था, तो उनको भगवान मानते थे और उनके दर्शन से बस उनको सब कुछ मिल गया, उतना ही उनको तो था आप दर्शन के लिए आ जाओ, फिर मेरा देह छूट जाए तो मुझे कोई विकल्प नहीं है, देह छूटने का भी मुझे कोई विकल्प नहीं है, फिर आपका दर्शन का विकल्प है। लगातार 7 महीना तक बहुत आतुर हो गए, बहुत आतुर लेखन लिखा के अब तो मेरा प्राण छूट जाए, अब मेरे विरह जो है सहन नहीं होता है, अब नहीं आओगे तो ऐसे ही विरह की वेदना में मेरा प्राण छूटेगा, रोग से नहीं छूटेगा, देख लिया कहा विपत्त आकाल इसका, अब उसको कोई प्रतिबंध नहीं है, तो सिर्फ मेरे को देखता है तो उसको कोई प्रतिबंध नहीं रहा, क्यों क्यों मृत्यु काल तो देखता ही है, मेरे से ही प्रतिबंध है तो अब मैं जो कहूंगा वो उठा लेगा, अब मेरी मत नीचे नहीं जाएगी, छूटेगी नहीं। बीच में कोशिश किया है 400 सुधारस करके देव ज्ञान को सुधारस के लिए सुधारस का पत्र चार सौ बहुत। आत्मा को समाधि होने के लिए, आत्मस्वरूप में स्थिति पाने के लिए सुधारस एक चीज है। ये क्या विज्ञान है, उसको सुधारस बोला है, अमृत रस बोला है। तो क्या है कि उनको विज्ञान तो देना था, तो 26 के साल में उन्होंने ये बात निकाली है सामने से, क्यों कि इस विषय में उसको कोई जिज्ञासा कौतूहल होती है क्या। लिखा है कि आत्मा को समाधि होने के लिए, अपने आत्म शांति, समाधि में आत्म शांति के लिए, आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए सुधारस एक चीज है जो मुख के विषय बरसती है। जैसे वो अमीरस कहते हैं ना, अमी कहो, अमृत कहो, सुधा कहो, वो तो शब्द अलग अलग है, एक ही चीज है। तो जैसे अमीरस छूटता है तो मुख में छूटता है, ऐसे आत्मा का मुख कहाँ है, उसकी पर्याय है, जहाँ स्वाद आता है मुख में स्वाद आता है, तो पर्याय में तो स्वाद आता है, जो वेदन है वो तो पर्याय में है, तो उस मुख के विषय, मुख में जो बरसता है सुधारस, थोड़ा नहीं आता है, बरसता है बरसात की तरह, यह एक अपूर्व आधार है अनुभव पाने के लिए, आत्मा की स्थिति होने के लिए, समाधि होने के लिए एक अपूर्व आधार है। बीज ज्ञान बिना किसी का काम नहीं हुआ है, स्वरूप स्थिरता आई नहीं किसी को, इसलिए किस प्रकार से उसको बीज ज्ञान कहो तो हरकत नहीं है, ऐसे सुधारस को बीज ज्ञान कह दो ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मात्र अंतर उतना है कि ज्ञान ज्ञानी पुरुष, इसे बीज ज्ञान है वो ज्ञानी पुरुष के जो वो बीज ज्ञान से आगे हैं, मतलब ज्ञान दशा में आए हुए हैं और स्वयं आत्मा रूप हुए हैं, आत्मा है, ऐसे जानने वाला चाहिए। मैंने विज्ञान ज्ञानी से मिलता है, प्रत्यक्ष योग बिना किसी को विज्ञान नहीं मिलता, ये कहने का अभिप्राय है। नहीं 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 बीज ज्ञान का हो तो हरकत नहीं, स्पष्ट कर दिया तो भावासन वाली बात है। बीज ज्ञान का तो उसको बीज ज्ञान कहो या उसे सुधारस कहो, उसमें कोई हरकत नहीं है। अच्छा, हम दूसरे कागज में लिखता है, वो आशोशुद्ध पांचम को लिखा, हम आशोशुद्ध नौम को चार दिन के पीछे दूसरा लिफाफा लिखा है, उसमें लिखते हैं कि खुले कागज में, खुला मैंने पोस्ट कार्ड, ये भी लिफाफा लिखते हैं, खुले कागज में सुधारस परत्वे प्राय स्पष्ट लिखा था, हमने जो लिखा था वो तो बिल्कुल क्लियरली लिखा था, गोल गोल बात नहीं लिखी थी, और इरादा पूर्वक लिखा था, मुख के विषय बरसता है ऐसा सुधारस, वो इरादा पूर्वक लिखा था, इसमें हमारा कोई इरादा था क्या, जिज्ञासा को जगाने का, ये क्या चीज है, मुंह में पानी आता है क्या, ऐसा लगे, ये बात नहीं है, द्रव्य रस की बात नहीं है, ये उसमें अनुभवांश से प्रतीति आती है, तो वेदन में प्रत्यक्षता शांतता अकषायता सुखरूप दिखता है, ये चाहिए लिखे वो तो चाहिए, मैंने इरादा पूर्वक लिखा था, ऐसे लिखने से विपरिणाम आने आने वाला नहीं ऐसा जान करके लिखा था, ऐसा लिख करके आप कोई उल्टी बात समझ जाएंगे नहीं समझेंगे, ऐसा समझ करके लिखा था, काई काई मैंने थोड़ा थोड़ा इस बात का चर्चक जीव को, इस बात की चर्चा करने वाले को चर्चक कहा है, जीव को जो यह बात पढ़ने में आवे तो पढ़ने से केवल उनको निर्धार हो जाए, निश्चय हो जाए या विज्ञान मिल जाए, ऐसा तो नहीं बनता है, पढ़ने से तो नहीं बनेगा, परंतु ऐसा बनता है कि जिस पुरुष ने ये वचन लिखा है यह पुरुष कोई अपूर्व मार्ग का ज्ञाता है, अपूर्व उपाय इसके पास है, ऐसा ध्यान खिंचाने के लिए हमने ये बात पत्र में निकाली। क्या हुआ था कि ये बिल लगाया, सुभाग भाई के जो पिताजी थे वहां से ये चर्चा आज भी साहिला में चलती है, क्या हुआ उसके पिताजी इस विषय के चर्चक थे और वो पर्चा बीज ज्ञान का वो देकर गए थे सुभाष भाई को, तो मुझे तो कोई सत्पुरुष नहीं मिला है, तुम खोजना, अगर कोई सत्पुरुष मिलेगा तो इसका भेद तुमको बताएगा, इसका रहस्य बता देगा, तो यहाँ से तो पहचान हुई है, फिर भी सुभाग भाई का बीज ज्ञान के प्रति ध्यान नहीं गया तो मैंने चिट्ठी लिखा, इस चिट्ठी लिखने के बाद भी ध्यान नहीं गया तो फिर उस विषय छोड़ दिया, कभी काल नहीं पका, फिर मृत्यु समय उनको इडर ले गया, इडर के पार पर बीज ज्ञान दिया है,
दो
नहीं आठ छब्बीस में आसपास है, सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस त्रीस में जेठ में का साढ़ा तीन वर्ष बीजा हो गया, बीजा साढ़ा तीन वर्ष पचे
धनात्म स्वरी के उपयोग रखे संख्या करना, वहाँ ऑटोमेटिक जो वेदन की क्रिया हो रही है उसको ही सुधारा समझना,
नहीं स्वरूप निश्चय था इतने सुधारा,
हाँ बरोबर
ये वक्त जो निश्चय था ने ते सुधारा था, આમાં શું છે, બહુ સરસ પત્ર છે, કારણ વાંચવું હોય તો જરા વિસ્તારથી વાંચશું આપણે, હા 472 છે, 472 માં વિસ્તારે થોડો કર્યો છે, કે ભાઈ આ વાતનો કોઈ થોડું પણ ખ્યાલ ગયો હોય તો જરા વધારે એને અંદરમાં જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય, એના માટે આમાં વિષય છેડ્યો છે. જોઈએ છીએ કે કેટલી જિજ્ઞાસા તમને થાય છે. પછી તો 3.5 વર્ષ છોડી દઉં, તૈયારી નથી થઈ એમની, 3.5 વર્ષ છૂટી ગયા.
ટેસ્ટ કેસ કરે છે,
બહુ વિચક્ષણ હતા, વિચક્ષણ ઘણા.
પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય, પ્રસન્ન મૂર્તિ ભગવતી માતાનો જય.
471 472 પત્ર સુધારસ કા પત્ર હૈ, વિષય અનુસંધાન હૈ દોનોં મેં. સુધારસ કો યહાં બીજ જ્ઞાન કહા હૈ, બીજ જ્ઞાન કો સુધારસ કહા. બીજ જ્ઞાન કો સમ્યક જ્ઞાન કા બીજ રૂપ જ્ઞાન કહો, ભાવ ભાષણ કહો, ઓર ઉસી કો મહત્વ દર્શાને કે લીએ યહાં સુધારસ કહેતે હૈ. મોક્ષ માર્ગ મેં इसके सिवा प्रवेश नहीं होता. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जो प्रारंभ है मोक्ष मार्ग का, इसका एक बीज बीज रूप ज्ञान होता है. इसके बिना किसी को ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, इसलिए इसका महत्व है. जैसे कि કોઈ ભી પરિણામ હૈ, એક સામાન્ય સિદ્ધાંત કા વિચાર કરતે, કોઈ ભી પરિણામ હૈ ઇસકા મૂલ્યાંકન કૈસે કિયા જાય, એક હમ પ્રશ્ન ઉઠાતે હૈ.
બરાબર.
જૈસે શાસ્ત્ર જ્ઞાન હૈ, વસ્તુ સ્વરૂપ કા જ્ઞાન હૈ, વો તો યા શુભરાગ હૈ, તો ઉસકા મૂલ્ય કૈસે કિયા જાય. જિસ જીવ કા પરિણામ હૈ, ઉસ જીવ કા લક્ષ્ય કહાં હૈ, ઉસ પર ઇસ પરિણામ કા મૂલ્યાંકન હોના ચાહિયે. તો મૂલ્યાંકન યથાર્થ હોગા, વરના મૂલ્યાંકન યથાર્થ નહીં હોગા. શાસ્ત્ર જ્ઞાન તો વસ્તુ સ્વરૂપ કા જ્ઞાન હૈ, લેકિન લક્ષ્ય રાગ ઉપર હૈ, લક્ષ્ય પર પદાર્થ પર હૈ, લક્ષ્ય મેં લોક સંજ્ઞા હૈ, લક્ષ્ય મેં કુછ ભી ગડબડ હૈ, સમજો. તો એ શાસ્ત્ર જ્ઞાન કા કોઈ મૂલ્ય નહીં હૈ, ભલે જ્ઞાન વસ્તુ સ્વરૂપ કે અનુસાર હો, ઇસકા કોઈ મૂલ્ય નહીં. ऐसे ज्ञानी भी भगवान की भक्ति करता है, अज्ञानी भी करता है, दोनों की एक समान लगे, या कभी अज्ञानी की विशेष लगे, ज्ञानी की उतनी विशेष नहीं लगे, कैसे मूल्य करेंगे? ज्ञानी करता भी अज्ञानी अच्छी भक्ति कर सकता है, ऐसा मूल्य कर सकते हैं क्या? और करे तो क्या सही है वो? क्यों? ज्ञानी का लक्ष्य आत्मा पर है, अज्ञानी का लक्ष्य राग पर है. तो ऐसा जो लक्ष्य का विषय महत्वपूर्ण है, इसका महत्व नहीं समझने से, इस लक्ष्य का विषय को छोड़ करके कोई प्रवृत्ति धर्म के क्षेत्र में करता है, तो उसका कोई मूल्य કુછ 3 સાલ પહેલે પરિચય મેં આયા હુએ હૈ, ઓર કઈ પ્રકાર કે ઉનકો પત્ર દ્વારા પ્રત્યક્ષતા મેં કઈ પ્રકાર કે
उपदेश ट्रीटमेंट दे करके उनको लगा है कि बहुत पात्र सुपात्र उत्कृष्ट पात्र जीव है, इसकी योग्यता को पहचानते हुए इस बात को छेड़िए सामने से। 472 में लिखते हैं कि हमने खुले पत्र में सुधारस के बारे में प्राय स्पष्ट लिखा था, वह सोच समझ करके इरादा पूर्वक लिखा था, चाहना से लिखा था, चाहिए लिखने ऐसा लिखने का हमको खास जरूरत आवश्यकता लगी कि ये बात आपको लिखनी चाहिए, दिखानी चाहिए, दर्शानी चाहिए, इसलिए हमने लिखा है। वो उनको आगे ले जाना चाहते थे, उसमें वो इस विषय को छेड़ा है। पहले वो 471 वाला है, वो खुला पत्र है, मैंने पोस्ट कार्ड है। लिखते हैं कि आत्मा को समाधि होने के लिए आत्मस्वरूप में स्थिति होने के लिए सुधारस की जो मुख के मुख में बरसता है यह एक अपूर्व आधार है। अपूर्व आधार लिया है सुधारस, जिसको भाववासन होता है वो अपूर्व होता है, और उसी कारण से आत्मा को समाधि होती है, आत्मा को स्वरूप स्थिति होती है, इसके बिना नहीं होती है, उतना महत्व है इसका, इसलिए हमको इस बात को बता रहे हैं। विचार करने योग्य कोई विषय है तो वो है कि ये अज्ञान दशा में सम्यक ज्ञान होने के पहले सम्यक ज्ञान का कारण रूप परिणमन है, ये कारण अज्ञान दशा में उत्पन्न होता है और इसके फल में कार्य ज्ञान दशा आती है, ऐसा विषय है। इसलिए कभी ऐसा नहीं लेना चाहिए मुमुक्षु को, हम तो अज्ञानी हैं अभी क्या करें। अज्ञान दशा में भी जितनी तैयारी करनी चाहिए उतनी तो तैयारी करो, ज्ञान दशा स्वतः आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी सहज रूप से। आत्मा को समाधि होने के लिए अपूर्व आधार है, आत्मस्वरूप में स्थिति होने के लिए भी अपूर्व आधार है, ऐसा एक विषय कृपालु देव सुभाष भाई को दर्शा रहे हैं। हम आपको ये बात बता रहे हैं कि एक अपूर्व परिस्थिति आपकी भूमिका में होनी चाहिए, बाद में आपको आत्मसमाधि आएगी, स्वरूप स्थिरता हो जाएगी। और यह सुधारस मुख में बरसता है, मुख में नहीं, ये मुख नहीं है, मुख में नहीं, यह मुख नहीं है जो अपना जीव वगैरह है, वो तो एक उपमा लिया है, जैसे मुख में अमीरस आता है, इसलिए बात तो पर्याय रूपी मुख में उसका स्वाद आएगा। मैंने वो कार्य पर्याय में होगा, तो कार्य पर्याय में होगा तो उस वक्त आपको कोई अपूर्व कार्य हुआ है ऐसा महसूस होगा, जैसे स्वाद का अनुभव होता है, वैसा कोई ऐसा कहेंगे कि हम बहुत साल से अध्यात्म के शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसे मुमुक्ष होते हैं, बहुत साल से अध्यात्म के शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको तो स्वरूप का निश्चय हो गया है, क्या हमको तो स्वरूप का निश्चय हो गया है, क्योंकि आत्मा ऐसा है, हमने चारों पड़खों से सभी पहलुओं से उस विषय को जैसा शास्त्रकार कहते हैं ऐसा समझते हैं, जैसे श्री गुरु कहते हैं ऐसा ही हम समझते हैं, इसके हमको तो निर्धार या निश्चय हो गया है आत्मा का, कहते कि कोई विशिष्ट परिस्थिति है कि जैसे मुख में कोई अमीरस का स्वाद आता है, रोग मिट जाता है ना, तो कईयों का मुंह बिगड़ जाता है, कोई स्वाद ही नहीं आता है, कुछ भी खाए अच्छे से अच्छी स्वादिष्ट चीज खाए तो कहीं हमको कुछ स्वाद नहीं आता, रोगिष्ट अवस्था में। जो रोग मिट जाता है तो उनको सब मीठा लगता है, अकेला बाजरे का रोटले का टुकड़ा भी चबाएगा ना तो बोलता है कि मीठा लगता है, साथ में कुछ नहीं है तो वो मीठा लगता है। क्यों? तो वो जो रस है, पाचक रस है, उसको हमें रस कहते हैं, वो तो इसमें मिलता है तो उसका स्वाद आता है। ठीक उस प्रकार यहाँ इसका उपमा दिया है कि इसका महत्व दर्शाने के लिए हम कहेंगे कि एक सुधा में अमृत रस है। कैसा रस है?
अमृत,
अमृत रस है ये। ऐसा एक अपूर्व आधार है। अभी भाववासन के काल में अनुभव जैसा आनंद का अमृत का स्वाद नहीं है, जो निर्विकल्प समाधि में आता है ऐसा तो नहीं आता है। फिर भी यहाँ इसका बहुत बड़ा नाम दिया है, भावभाषण का बहुत बड़ा नाम दिया है। अच्छा, कोई अमृत जैसा कोई स्वाद होगा? ये जानबूझ करके इस शब्द का प्रयोग किया है, कृपालु देव के अलावा इस शब्द का प्रयोग कहीं देखा नहीं जाता है भावभाषण के विषय में। तो ये तो सुभाग भाई को जानबूझ करके लिखा है, वो कहेंगे, खोलेंगे इस बात को कि हमने क्यों ऐसा लिखा है कि आपके यहाँ इसकी कुछ चर्चा चल रही है कि बीज ज्ञान कुछ होना चाहिए फिर ज्ञान होगा, बीज रूप ज्ञान कुछ होना चाहिए, वो चर्चा इनके पिताजी के समय से चल रही है और अभी भी शैला में चलती है कि भाई सौभाग भाई ने बीज ज्ञान उसको दिया था, एक कालिदास भाई के थे, वो कालिदास भाई ने उसको भी दिया था, उसको उसने दिया था, ऐसा ऐसा करके अभी चलता है थोड़ा, वो चर्चा बहुत चलती है वहाँ। और सौभाग भाई के पिताजी के साल से करीब 5 पीढ़ी से वो चर्चा चलती है, बीज ज्ञान का महत्व बहुत है वहाँ। और जगह ऐसा माहौल नहीं है जैसा शैला के आश्रम में आज भी है ना, वो बीज ज्ञान देते कि नहीं सबको? हाँ, विज्ञान भी देते हैं, सम्यक दर्शन भी देते हैं। मैंने तो नहीं देखा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये चलता है फिर क्या है, फिर वो प्रभाव चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कृपालु देव ने तो विज्ञान के लिए बात किया ना, तो सुभाग भाई को विज्ञान दिया तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते, ऐसा लगे ना। ज्ञानी जो को ज्ञानी मानेगा तो दूसरे को बीज ज्ञान देने की बात करेगा,
ऐसा बीज ज्ञान देने का अधिकारी कौन है? बीज ज्ञान देने का अधिकारी
ज्ञानी होते हैं, वो तो लिखते हैं तो ज्ञानी होना चाहिए, वो तो कहते हैं, वो तो कहेंगे उस वक्त, इसी परिग्राफ में कहते हैं हाँ। लल्लू भाई को पर्चा दिया था, किसी ज्ञानी ने दिया था, उनकी बहुत सेवा किया था, वो कोई राजस्थान के कोई थे, राजस्थान में चले गए थे इसका नाम सुन करके, बहुत प्रभावित हुए, उनकी सेवा में कुछ समय रह गए, फिर उसका जाने का टाइम हुआ, कोई 4-6 महीने के बाद बोले कि महाराज मैं तो बहुत सामान्य स्थिति का आदमी हूँ और दुखी भी हूँ, तो आपकी कृपा कुछ हो जाए। बोल के दुखी है मतलब क्या, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो उसने थोड़ा ठपका दिया कि देखिए महात्माओं से कभी पुद्गल की वांछा नहीं करना चाहिए, ऐसे पैसे नहीं, आप तो बड़े महात्मा हैं, कुछ रिद्धि सिद्धि भी आपके पास है ऐसा सुना है, सुनकर के तो मैं इधर आया, चुनौतियाँ भी है आपके पास, उनको थोड़ी प्रसादी दे दो तो हमारा तो कष्ट सब मिट जाएगा। उन लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी धार्मिक पुरुष से ऐसे पैसों की या कोई संयोग की सुधार की, रोग के सुधार की, दारिद्र के सुधार की, किसी भी प्रकार के परिवार के ऐसी वांछा करने नहीं चाहिए। ऐसा उसने ठपका दिया। महाराज मैं तो कुछ नहीं समझता, आप कृपा कुछ हो जाए बस उतनी बात। उसको उनके ऊपर प्रेम बहुत था, उसने इसमें सेवा भी ऐसी की है क्या था, पर्चा लिख करके दे दिया। और कोई सत्पुरुष होगा यही इस विषय का तुमको स्पष्टीकरण देगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बहुत युक्ति से वो प्रसंग बनाया जिसने बनाया उसने, कि अभी तो उसको सत्पुरुष की खोज नहीं है, अब तो संयोग की उसको पड़ी है, मेरे संयोग ऐसे हो जाए, संयोग ऐसे हो जाए, ऐसा अब क्या करें, तो उनको ऐसे रखा। तो कोई सत्पुरुष को तुम खोजना और इसका स्पष्टीकरण दे पाएगा, दूसरे का इसमें काम नहीं है, और कोई सत्पुरुष मिलेगा तो तेरा काम बच जाएगा। तो उसका उसने एक आधार दे दिया कि इसका स्पष्टीकरण देने वाला सत्पुरुष होगा और ये तुम्हारा कल्याण का कारण बन सकता है। तो अपने जीवन में कोई कई जगह जगह गए, मुझे कोई मिला नहीं, फिर तो प्रभात भाई को देते दे। क्योंकि महात्मा की प्रसादी है, कोई सत्पुरुष मिलेगा वो तुमको बताएगा। विज्ञान का विषय है, उनको विश्वास प्रतीति आ गया और तब से उनको उसकी पहचान कर ली, तब से इसके पीछे लगे हुए हैं। ऐसा वो भी सुनने की सुना सुनी सुनाई बात है, सब कोई आधारभूत बात ऑथेंटिक कोई चीज नहीं मिलती है। इनके परिचय में आए 3 साल हो गए तो वही बात हो छेड़ते हैं अभी योग्यता देख करके, कि अगर उनको उसमें कौतूहल होवे, रस होवे, जिज्ञासा हो जाए तो वो बात उसके पल्ले पड़ेगी, अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो बात पल्ले पड़ेगी नहीं। ये बात है। बिना प्रत्यक्ष सत्पुरुष भाव भाषण नहीं हो सकता। संस्कारी जीव की बात अलग है, पूर्व के संस्कार वाली की बात अलग है। वर्तमान समय में तो वो ज्ञानी पुरुष चाहिए, क्योंकि वो कोई बता सकते नहीं है, प्रैक्टिकल साइड बताने करते हैं। कल थोड़ी बात चर्चा में चली थी कि उसकी जो प्रैक्टिकल साइड है, कि वर्तमान जो परिणमन है उस परिणमन में वेदन ग्राह्य होना चाहिए आत्मा,
बराबर
वेदन से वो ग्रहण करने योग्य चीजें, विचार से थिंकिंग से वो बात नहीं है, और कोई परोक्ष चीज की बात नहीं है, जो प्रत्यक्ष है उसको ग्रहण करने की बात है। तो ग्रहण तो रुचि बिना होता नहीं, अत्यंत आत्मरुचि हो, ग्रहण करने की जिज्ञासा हो और अंतर अवलोकन हो, तो अपने ज्ञान में से ज्ञान स्वभाव को वो आवासन में ले सकता है वेदन से। ऐसे सुधारस को कोई प्रकार से बीज ज्ञान कहो तो हरकत नहीं है, मात्र उतना भेद है कि वह ज्ञान ज्ञानी पुरुष के जो उससे आगड़ है, यानी वे भावासन से आगे निकल चुके हैं, अनुभव ज्ञानी है, आत्मा है, आत्मा को अनुभव, आत्मा का अनुभवी है, उसको आत्मा ही कह दिया, ज्ञानी को ही आत्मा कह दिया, आत्मा है, ऐसे जानने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, अभी दूसरा संकेत है लेकिन इससे आगे होना चाहिए, आत्मा है उसी को आत्मा बोला, आत्मा रूप जो हुआ है। ज्ञान पर आत्मज्ञान की मूर्तिमंत आत्मज्ञान स्वरूप सत्पुरुष को क्या लिखते हैं वो, मूर्तिमंत आत्मज्ञान स्वरूप ऐसे सत्पुरुष ऐसा लिया है। आत्मा है और ऐसा जानने वाला जानकार होना चाहिए। जो अनजाना है इस विषय से, अनुभवी नहीं है, इसका काम इसमें। तो ये प्रश्न का उत्तर आ गया कि दूसरा कोई दे सकता नहीं। द्रव्य से द्रव्य मिलता नहीं, एक दूसरा पैराग्राफ बीच में लेते हैं कि द्रव्य से द्रव्य मिलता नहीं, ऐसे जानने वाले को कुछ कर्तव्य कह सकते नहीं। फिर भी वो कब कि स्वद्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव में यथावस्थित समझाने पर स्वद्रव्य स्वरूप परिणामे परिणमी अन्य द्रव्य प्रत्यय केवल उदास होकर के कृतिकृत होकर के फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता है, ऐसा घटित होता है और ऐसा ही है। क्या है कि कृपालु देव ने द्रव्यानियोग की बात थोड़ी थोड़ी शुरू की है। पहले तो वो हरि और ईश्वर इच्छा की बात करते रहते थे, क्योंकि वो अन्य संप्रदाय में मान्यता धराते थे, तो उनकी भाषा में बात करते जाते थे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने ये जैन दर्शन की परिभाषा शुरू किया, उसमें ये द्रव्यानुयोग समय सार के कुछ बातें दूसरी दूसरी कोई बातें शुरू किया है। तो उसमें एक बात प्रसिद्ध है द्रव्यानुयोग में कि एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जब एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को मिलता ही नहीं, स्पर्शता ही नहीं, भिन्न ही भिन्न रहता है सर्वथा, तो ऐसे जानने वाले को फिर कर्तव्य क्या रहा, तो स्वरूप भिन्न हो जाए। क्योंकि मेरे से तो किसी से, मुझे तो किसी से कोई संबंध नहीं है, तो उसको तो मलिन होने का सिवाय कोई कर्तव्य होता नहीं है, बाहर में कोई उसका कर्तव्य नहीं है। एक बात, लेकिन वो कब जान लिया तो ऐसा हो जाता है कि नहीं, जान लेने से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि स्वद्रव द्रव्य क्षेत्र काल भावे यथास्थित समझाए, अपना स्वद्रव मैंने अपना आत्मा द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से यथा अवस्थित समझा, समझ में आ जाए, समझ में आकर के फिर स्वद्रव स्वरूप परिणामे परिणमे, अपना द्रव्य अपना स्वरूप परिणाम रूप परिणमन करने लगे और अन्य द्रव्य से बिल्कुल उदास हो जाए, केवल उदास हो जाए, तब वो कृतकृत हो जाता है। फिर उसको कुछ बार में कर्तव्य नहीं रहता है, ऐसा घटता है और ऐसा ही है, और सभी अरिहंत सिद्ध का ऐसा ही देखने में आता है। बाह्य प्रवृत्ति मुनि दशा में कम हो जाती है। ये तीन योग है, मन वचन काया का योग, उसकी प्रवृत्ति संयम पूर्वक जिनाज्ञा अनुसार, संयम पूर्वक में भी जिनाज्ञा अनुसार संयम पूर्वक घटती जाती स्थिति वो भी कम होती जाती है। अंते थाए निज स्वरूप मा तो सब प्रवृत्ति बंद कृतकृत हो गया, क्योंकि स्वद्रव समझ में आया, स्वद्रव तो स्वरूप परिणामे परिणम गया, स्वद्रव है वो स्वरूप परिणामे परिणम गया, बात खत्म हो गई, उसको कुछ करना रहता कृतकृत हो गया। इतना लिख करके कोई आगे पीछे चर्चा चलती है, इसका एक स्पष्टीकरण ये सुधारस के पत्र में तीन पंक्ति में दे दिया है। फिर चार दिन के बाद एक दूसरा पत्र वो लिख रहे हैं, ये बीच की स्थिति है, दोनों का जो छह सात साल का संयोग है उसमें मिडल बीच की स्थिति है। इधर जो 300 पत्र करीब है, 300 से तीन चार ज्यादा, ये 150 ऊपर का एक दोस्त ने नंबरिंग दिया है सुभाष भाई को पता है। परम स्नेही श्री सुभाग्य तथा श्री डूंगर श्री सायरा, परम स्नेही लिखते हैं। आज एक पत्र सुभाग्य का लिखा हुआ आया, वह पहुंचा है। खुले पत्र में सुधारस परत्वे प्राय स्पष्ट लिखा था, वह जानबूझकर लिखा था। ऐसा लिखने से विपरिणाम आने वाला नहीं है ऐसा जानकर लिखा था। विपरिणाम मैंने क्या, कोई आप कल्पना में नहीं चढ़ जाएंगे, सुधारस शब्द का प्रयोग करते हुए भी आप कोई ऐसी कल्पना में नहीं चढ़ जाए कि मुंह में कुछ पानी आता होगा, ऐसी कल्पना में आप लोग नहीं चढ़ जाएंगे। वो हमारा ख्याल में था, वरना क्या बोले कि मुख के मुख में वो बरसता है, तो जब स्वरूप का निश्चय होता होगा तो पानी भी आता होगा मुख में, मुंह में पानी भी आता होगा, जैसे मिठाई देख करके पानी आता है, ऐसा आत्मा को देख कर पानी आता होगा, ऐसी बात कोई नहीं है। ऐसा कोई विपरीत परिणाम नहीं आने वाला था, वो भी हम जानते थे, ऐसा जानकर लिखा था। कुछ कुछ यह बात का चर्चक जीव को, चर्चा करने वाले जीव को, जो यह बात पढ़ने में आवे तो केवल उससे निर्धार हो जाए ऐसा बने नहीं, इसकी चर्चा करने वाले को लिख के देवे तो उसको भावभाषण हो जाए ऐसा तो बनेगा नहीं, परंतु ऐसा बने कि जिस पुरुष ने ये बात लिखी है वह पुरुष कोई अपूर्व मार्ग का ज्ञाता है, तो ये सत्पुरुष के प्रति ध्यान खींचाने के लिए हमने ये बात लिखा था कि ये कोई मार्ग का दाता ज्ञाता है, इस विषय के जानकार है, इसलिए इनके पास से हमको कुछ मिलने का संभव हो सकता है विज्ञान का। यह पुरुष कोई अपूर्व मार्ग का ज्ञाता है और यह बात का निराकरण, निराकरण मैंने स्पष्टीकरण, कोई भी उलझन होवे तो वही निकाल सकेगा, दूसरा कोई निकाल सकेगा
नहीं,
उसका निराकरण उसकी ओर से होने का मुख्य संभव है ऐसा जानकर उसकी उसके प्रति कहीं भी भावना होती है। अगर ये जानकार है और विशेष स्पष्टीकरण यहाँ से मिलेगा तो उसको इस विषय में और दिलचस्पी हो जाए ऐसी भावना होगी, भावना मैंने प्राप्ति की भावना उसको हो जाए। वो प्राप्ति की भावना क्रिएट करने के हेतु तो हमने इस विषय को छेड़ा है, ऐसा कर ऐसा अभिप्राय है। आप हमारे संघ में 3 साल से हैं और विज्ञान का विषय ही नहीं चल रहा है आपस में, तो विज्ञान के विषय में आपकी भावना उत्पन्न करने के लिए हमने ऐसे 2-3 पंक्ति खुले कागज में लिख दिया पोस्ट कार्ड में। कदापि ऐसा अनुमान करने में आए कि उसकी कहीं कहीं संगना उसके विषय में हुई हो और यह स्पष्ट लिखावट पढ़ने से उसको विशेष संगना हो करके अपने आप वह निर्धार में आ जाए, परंतु यह निर्धार ऐसे नहीं होता। क्या बोले कि आपको कदाच ऐसा अनुमान लगे कि ऐसी ऐसी कुछ बात हमारी चर्चा में तो आगे से चली आ रही है, हमारे गांव में तो कोई ऐसी ऐसी संगना मैंने कोई ऐसी बात का आसार उसको अनुमान में आया हो कि कोई विज्ञान जैसी कोई चीज है, और ऐसा स्पष्ट लखान लिखावट मिलने से, लिखी हुई बात मिलने से इसको लखान कहते हैं। विशेष उसको संज्ञा हो जाए, मैंने विशेष ज्ञान हो जाए और उसका उसको भावभाषण हो जाए, ऐसा मान लेना मत, ऐसा मत मान, अपने आप निर्धार हो जाए, ऐसे तो निर्धार होता नहीं। यथार्थ इसके स्थल का जानना इससे हो सकेगा नहीं, ऐसे लिखने से देंगे तो कोई उसका ज्ञान हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, वो भी बनने वाला नहीं। और उसी कारण से जीव को विक्षेप की उत्पत्ति होती है, बस यही विक्षेप कराने के लिए लिखा था कि आपको जानने को तो हमारे लिखावट से तो कोई समझ में बात आ जाएगी नहीं, निर्धार हो जाएगा नहीं, आप इस विषय में कुछ समझना तो चाहते हैं, ऐसी तो बात है, आपका ध्यान गया है लेकिन उभापो नहीं चलता है। विक्षेप मैंने क्या, उभापो भीतर में होना है। ये कैसे कैसी बात होगी, ये भावभाषण क्या चीज होगी, कैसे होगा, किस प्रकार की ये बात है, वो घटना कौन सी भीतर में होती है, ऐसा उभापो, इसको विक्षेप बोला है। इधर जो उभापो नहीं होता तो अविक्षेप परिस्थिति है, वो अच्छी नहीं है। क्या ठीक है, शास्त्र पढ़े जा, पत्र लिखे जा, ये बात ऐसी नहीं, भीतर में उहापो होना ही चाहिए, एक वैज्ञानिक परिस्थिति है। जब किसी जीव को तीव्र तीव्रतम जिज्ञासा हो जाती है, बहुत तीव्र जिज्ञासा हो जाती है परमार्थ के विषय में, तब ही उसी जीव को के परिणमन में परमार्थ देने वाला कोई परमार्थ देता है तो उसको ग्रहण करने का अवकाश है, होता है, खाली जगह। इसके पहले खाली जगह नहीं है, तो खाली जगह करवाई पहले, कितना विचक्षण थे वो, कि देखा कि उनको विक्षेप नहीं हो रहा है, वहां पर नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे तो पकड़ेंगे, बात को ग्रहण नहीं करेंगे, तो पहले विक्षेप डालो, जानबूझकर विक्षेप डाला, तो सुधारस क्या होगा, बीज ज्ञान तो सुना था, बड़ी सुधारस कहाँ से आया बीच में, क्या कोई अमृत की बात है, कैसी बात होगी, सुधारस मैंने कैसा होगा, किस प्रकार की घटना होगी, कि जो मुख में बरसता है ऐसा लिखते हैं, तो उनको भीतर में जिज्ञासा खड़ी कर दी और तीव्र जिज्ञासा में आ जाए, ऐसे हमारी कोई बात बीच मन में थी इसलिए वो चिट्ठी लिखी थी, उसका खुलासा करते हैं, हमने क्यों ऐसी चिट्ठी लिखी। इस कारण से जीव को विक्षेप की उत्पत्ति होती है, कि यह बात किसी भी प्रकार में जानने में आ जाए तो अच्छा, इसकी भावना हो जाए, ये विषय कैसे जैसे कैसे भी उनको ग्रहण हो जाए तो अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से भी जिस पुरुष ने लिखा है उसके प्रति उसको भावना की उत्पत्ति होनी संभवित है, कि यहाँ से ही मिलेगा और यहाँ से लेने के लिए उसकी भावना तीव्र हो जाती है, तो कितनी करुणा की है, अगले को भावना नहीं होती तो भावना कराने के लिए छेड़ते हैं विषय को, और बहुत ट्रिक से बात रखते हैं, युक्ति से रख देते हैं, तो खलबली तो होवे, ऐसा पड़ा है शांत होकर के, ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा खलबली हो जाए फिर अंदर जगह होगी, फिर वस्तु मिलेगी, बहुत विचक्षण
गड़बड़ा अर्थ बोल। અંદર ખળભળાટ થવો જોઈએ.
જિજ્ઞાસા વગર વિચાર કી ભૂમિકા મે બિના જિજ્ઞાસા સત્ય કો સ્થાન પાને કી જગ્યા હી નહીં હોતી. સત્ય મિલ જાય તો ભી ઉપર સે જાતા હૈ, ક્યોંકિ વહાં તો જગ્યા હૈ નહીં, સ્થાન નહીં પાયેગા વો. યે બાત સમજાયેગી. ઇસલિયે વો જો પ્રશ્નોત્તર રૂપ મે શાસ્ત્ર લિખે ગયે હૈ યા જ્ઞાની હૈ આચાર્ય હૈ વો પ્રશ્ન ઉઠા કરકે ઉત્તર દેતે હૈ, ઇસકા યહી કારણ હૈ કે ઇધર જિજ્ઞાસા મેં આ જાઓ. તો ઇસ ઉત્તર સુનને કે લિયે તુમ્હારી પહેલે જિજ્ઞાસા હોની ચાહિયે. ઇસ પ્રકાર કી જિજ્ઞાસા હોગી તો યે ઉત્તર આપકો સમજ મેં આયેગા, વરના ઉત્તર સમજ મેં
નહીં. જો પ્રશ્ન પૂછતા હૈ ઉસકો જવાબ દેતા હૈ, સમય સર મેં એસા ક્રમ લિયે.
ક્યા ઉસકો ગરજ હૈ, उसको गरज है, वरना क्या करता है. ये श्लोक है, आप इसका अर्थ समझाइए. प्रश्न घर क्या कर देता है, ये दो चार फलाने शास्त्र के वचन हैं, इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए. क्या जैसे हमको तो कोई उसमें हमारा क्या कौन सी समस्या है वो नहीं निकालते हैं. तो उत्तर प्रश्न है वो उत्तर को खींच करके ले आता है. प्रश्न होना ही चाहिए, जिज्ञासा होनी ही चाहिए. जब ये उत्तर है तो अंदर में आएगा, वरना ऊपर से जाएगा.
जैसे अगर यूं थे तो कोई ये कैसे अनुसूत है प्रश्न पूछो एम नहीं,
उसमें तो दूसरा एक हेतु था कि गुरुदेव के समाज में श्री ज्ञानी होने पर भी बहनों का व्याख्यान की पद्धति परंपरा वो नहीं चाहते थे. इसलिए वैश्री को ज्ञान होने पर भी कभी इसका व्याख्यान का आयोजन नहीं हुआ है कि चलो मैं एक महीना इधर हूँ और इधर कोई सोनगढ़ में नहीं है तो वैश्री व्याख्यान करेगी, ऐसे पद्धति परंपरा उन्होंने दूरंदेशी दृष्टि से ये बात को उन्होंने परंपरा में नहीं रखी. क्यों कि मैंने भी एक उम्र से तो होगी नहीं, छोटी उम्र बड़ी उम्र सब होती है और वो व्याख्यान चलेगा, भाई लोग सुनने को बैठेगा तो बात तो कई प्रकार की चलेगी. इधर तो एक ऐसे शास्त्र के अनेक प्रकार के दृष्टांत, अनेक प्रकार की बातें शास्त्र में आती है. तो कई प्रकार के उल्टे सुलटे प्रसंग बनने की इसमें संभावना है. आगे जाकर के ऐसी परंपरा चले तो कई प्रकार की गड़बड़ हो जाने की संभावना देख करके उन्होंने ये पद्धति नहीं रखे कि कोई बहन ज्ञानी भी हो तो वो प्रवचन दे और समाज सुनने को बैठे हैं. ये बात होने चालू है, ज्ञानी होने पर भी ये बात चालू नहीं है. उसमें बहुत दूरंदेशी है कि ये बात चालू हो जाएगी, एक बहन दो बहन चार बहन फिर कितने की? जैसे पंडित बहुत होते हैं ऐसे पंडिता बहुत हो जाएगी, बहुत पंडित होते तो पंडिता भी बहुत हो जाएगी. ज्यादा पंडिता हो जाने से कभी कभी क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्या मालूम. इसलिए उन्होंने लिमिट में बात रखी थी. इसलिए बैंसरी रह गई, बाद में गुरुदेव तो स्वर्ग में चले गए और प्रवचन चालू नहीं किया उन्होंने अपना. प्रवचन चालू नहीं किया तो ज्ञान तो इसके पास है, ज्ञान का जो ज्ञानार्जन जिसको करना है वो तो उनके पास जाएगा. तो बोले कि तुम्हारी जिज्ञासा हो तो हम उत्तर देंगे, अगर तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो हम उत्तर दे सकते हैं, बाकी हम प्रवचन प्रवचन करने वाले वो बात थी. बात थी वो थी कि तुम प्रश्न पूछो तो हम उत्तर देंगे उसका, लेकिन हम शास्त्र लेकर के प्रवचन करने को बैठ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं किया।
मातियानो फकरानो सू, तो ये प्रश्न सू है हम,
कोई प्रश्न हो तुम्हारा जिज्ञासा का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कोई शास्त्र प्रवचन करने को हम नहीं बैठेंगे। गुरुदेव ने कभी आज्ञा दी नहीं थी, आज्ञा देते तो अलग बात थी, लेकिन आज्ञा दी नहीं उन्होंने अपने जीवन में। 45 साल स्वामगढ़ में रहे, भैंसरी भी रही, आज्ञा नहीं दी कि तुमको प्रवचन करना है, और हम चले जाने के बाद तुमको प्रवचन, ऐसा भी नहीं आज्ञा दी। वो तो बहुत आज्ञांकित थे, एक एक बात को समझते थे, इसमें भी कोई राज है, कोई रहस्य है, बुद्धि की दृष्टि है। ज्ञानी पुरुष महापुरुष होते हैं, बहुत विचक्षण होते हैं, महाप्रज्ञावंत होते हैं, और जितना भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, छोटी मोटी बात में ऐसे वो भी पकड़ते हैं ऐसे, ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं किया तो नहीं करना है, किया तो करना है, ऐसा क्योंकि इसकी परंपरा चल जाएगी। अभी हमारे यहाँ कुछ नए प्रवचन करती है वो गुरु आज्ञा नहीं है, ऐसी बात है। ज्ञान प्राप्ति हो सकती नहीं है, जैसे दृढ़ दृष्टि प्रकाश में ये हुआ, गुरुदेव ने रोक लगा दिया, पाबंदी कर लिया, रिस्ट्रिक्शन आ गया, मैं मेरे हाथ से दूंगा, तो उसके पहले हमारे हाथ से कोई 5 नकल छोड़ दी थी। हमारे जो परिचय में थे वो लोग, उन लोगों को हमने पढ़ने को दिया था कि ये ग्रंथ पढ़ने लायक है, हमने वापस मंगा लिया। गुरुदेव ने ऑर्डर किया है कि हमारे हाथ से देंगे, तो देख देख करके सबको नहीं देते थे,
नहीं
कुछ। सुगाने जी के घर से उनकी पत्नी आई तो उन्होंने मांगा, हमने तो नहीं दिया, उनको भी नहीं दिया, जबकि प्रकाशन उनके वर्ष था, पजेशन हमारा था, नहीं दिया, तो बोलते देंगे आपको, चलो। और गुरुदेव ने एक नकल दिया, बोले कि आपको तिजोरी में रखने का है, घर में लड़के को नहीं पढ़ाना, लड़के की बहू को नहीं पढ़ाना, कोई मेहमान विवाह आए उसको नहीं पढ़ाना, किसको नहीं देना, तिजोरी में रखना, तुम पढ़ना है, दूसरे को मत देना। महाराज हमको तो 25 नकल चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, एक ही नकल मिलेगा, बोला क्या नहीं बोलेगा, प्रकाशन इनके ओर से था, तो क्या समझे कि हमारे जो सगे संबंधी हैं समझे सबको एक एक नकल भेजेंगे, नहीं एक ही मिलेगा, 25-25 नकल नहीं मिलेगा, और कड़क टोन में बोले थे, कोई पढ़ेगा घर का लड़का बड़का तो मंदिर जाना बंद हो जाएगा क्या इसका, तो मंदिर जाएगा तो मंदिर जाने का बंद कर देगा, ऐसा हो जाएगा। बात निश्चय की बहुत थी, निश्चय भाषा हो जाए जल्दी से, इसलिए किसको नहीं पढ़ाना, ऐसा सूचना करके एक एक को पकड़ पकड़ कर देते थे, ऐसी सूचना करते थे। फिर भी कोई चोरी से पढ़ ले किसी के यहाँ से, तो ऐसे चोरी से पढ़ने से कोई उसको ज्ञान मिल जाए,
नहीं
ऐसा नहीं मिलता। उनको ये पता होना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से कोई ज्ञान प्राप्ति होगी
नहीं,
क्यों कि अभी नहीं तो हो ही गया, ज्ञान तो विनय से प्राप्त होता है, अविनय से कोई ज्ञान प्राप्ति होती है क्या, हो ही नहीं सकती, ऐसी बात है।
तो इसमत ही कॉपी करें, इसमें आप ही कॉपी कर रहे हैं,
हाँ तो क्या क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसने गुरुदेव पर रिस्ट्रिक्शन कर रखा हो, इसमें क्या होगा, तो लोगों को ये हो गया क्यूरियोसिटी होगी। भाइयों को अलाउड नहीं करते थे समाज के बीच में, नहीं तो ब्रह्मचारी बहने बहुत हुई थी, दूसरे भी लोग माथे आते थे, बहने सब जाते थे महर्षि के पास, उनका रात्रि को स्वाध्याय शास्त्र स्वाध्याय चलता था, वो कर सकते हैं आज भी कर सकते हैं। महिला सभा में कोई बहन ज्ञानी हो या विशिष्ट समझदार हो वो स्वाध्याय करा सकती है, लेकिन समाज के बीच में नहीं, उसमें अंतर है बहुत। ऐसी बात यही बात निकलती है अभी। एक ऐसा भी प्रकार समझने योग्य है, त्रिजा मैंने तीसरी बात अब कह रहे हैं, मैंने एक ऐसा भी प्रकार समझने योग्य है कि सत्पुरुष की वाणी स्पष्ट रूप से लिखी गई हो तो भी उसका परमार्थ, सत्पुरुष का सत्संग जिसने आज्ञांकितपना से नहीं किया उसको समझाना दुर्लभ है। वो समझ पाएगा?
स्पष्ट बात आई,
यही बात आई, कितने भी स्पष्ट बात लिख करके गए हो, वाणी स्पष्ट लिखी गई हो फिर भी इसका परमार्थ जिसने सत्पुरुष का सत्संग आज्ञांकितपना से हुआ नहीं वो उसका परमार्थ समझने के लिए लायक होगा। तो आज्ञांकित
पत्रांक 400 चलता है। एक प्रकार और समझने योग्य है करके लिखते हैं कि सत्पुरुष की वाणी स्पष्ट रूप से लिखी गई हो तो भी उसका परमार्थ सत्पुरुष का सत्संग जिसे आज्ञांकित रूप से नहीं हुआ हो उसको समझाना दुर्लभ, उसको समझाना दुर्लभ। उनको जरा बात लेकर के दरवाजा बंद करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि सत्संग में बुद्धिमता से कोई बात परमार्थ की समझ में आ जाती है, क्षयोपशम विशेष के कारण से समझ में आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सत्पुरुष का संग विनय से अज्ञांकित होकर के करता है उसको उसकी बात समझ में आ जाती है, परमार्थ समझ में आ जाता है। स्पष्ट लिखी हो तो भी समझ में नहीं आए, इसका क्या कारण? बुद्धि तो है, बुद्धि है फिर भी परमार्थ पारमार्थिक प्रयोजन पर लक्ष्य जाना ध्यान जाना इसके लिए योग्यता चाहिए। और ऐसी योग्यता सत्संग में आने वाले को किसी को होती है किसी को नहीं होती है, सभी को नहीं होती है, किसी को होती है किसी को नहीं होती है। जिसको नहीं होती है उसका प्रकार ऐसा है कि उसका प्रयोजन कहीं और जगह होने से उसका दृष्टिकोण वहां काम करता है तो इधर नहीं काम करता है
बराबर।
जैसे प्रयोजन दो तरह का होता है, एक आत्म कल्याण रूप मोक्ष का और एक सांसारिक। उसको छोड़ो तो सब सांसारिक है, इसी एक प्रयोजन को छोड़ने से सभी प्रयोजन संसार के खाते में जाता है। तो जिसका ये प्रयोजन हुआ तो उस विषय की जितनी पारमार्थिक बातें हैं तो उनके समझ में आएगी और वो अज्ञान कितनी रहेगा होगा। जिसको प्रयोजन ही अलग है वहां उसका बुद्धि उसका लक्ष्य वही बराबर काम करेगा और वो आज्ञांकित रूप से रहेगा नहीं, कहीं न कहीं अपनी मनमानी करने लग जाएगा। इसलिए उनको स्पष्ट बताया हो तो भी उनको समझ में
नहीं,
नहीं आता कि मेरे काम की चीज बताई गई, ऐसा समझ में नहीं आता है। और वो बात उसको चौंकती नहीं, आत्मलक्ष्य वाले को चौंटती है, इसको चौंटती
नहीं। मर्म ज्ञानी ना हृदय में से
नहीं, हम ज्ञानी ने बात नहीं आए तो मुमुक्षु ने बात है कि जो मुमुक्षु है એને જ્ઞાનીની વાણી સ્પષ્ટપણે લખેલી એને જ વાંચવામાં આવે તો પણ એને એનો પરમાર્થ ન સમજાય, મર્મ તો એને સમજ, પણ અજ્ઞાનકિતપણે જો જેને સત્સંગ ઉપાયશો એને સમજાય, અહીંયા શું વાત લેતો, અજ્ઞાનકિતપણે જેને સત્સંગ ઉપાયશો નથી એને ન સમજાય, વાણી તો વાણી છે ને સ્પષ્ટતા તો સ્પષ્ટતા છે, અજ્ઞાંકિતપણે સત્સંગ ઉપાયશો છે એને તે સમજાય છે, જેને અજ્ઞાંકિતપણે સત્સંગ નથી ઉપાયશો એને નથી સમજાય, એટલો જ અહીંયા તો તફાવત બે વચ્ચેનો લેવો છે, મુમુક્ષુની યોગ્યતાનો તફાવત લેવો છે।
કોઈ જીવ દર્શન પરિષદમાં આવ્યો હોય અને પ્રત્યક્ષ યોગમાં પણ હોય અને ત્યારે સત્પુરુષનું માર્ગદર્શન પણ મળતું હોય અને પછી યોગ છૂટી જાય, પ્રત્યક્ષ યોગમાં કામ ન કરી શકે, ન થાય, પછી ફરીથી પાછું એ વિજ્ઞાન માટે પ્રત્યક્ષ યોગ જ જોઈએ કે પછી એની મેળે કામ કરી લઈએ?
એનો આધાર પ્રત્યક્ષ યોગમાં કેટલું ગ્રહણ કર્યું છે એના ઉપર છે
જી।
પ્રત્યક્ષ યોગમાં ગ્રહણ કર્યું હોય પારમાર્થિક રહસ્ય તો પુરુષાર્થ પાછળથી ઉપડીને કામ થાય ખરું, કારણ કે પછી તો બે ફેક્ટર છે એના, એક તો ગ્રહણ કેટલું કર્યું છે કે નથી કર્યું એ, બીજો એનો પુરુષાર્થ કેટલો ચાલે છે તે, જ્ઞાન અને પુરુષાર્થ બે કામ કરે છે। પ્રત્યક્ષ યુગમાં સુગમતા વિશેષ રહે છે, પરોક્ષ યુગમાં એટલી સુગમતા નથી રહેતી, પણ ન જ થાય એવું કાંઈ નથી, કેમ કે પ્રત્યક્ષ યુગ મળ્યો છે, પ્રત્યક્ષ યુગે જીલ્યું છે, ગ્રહણ કર્યું છે, તો એનું કામ ચાલવાની સંભાવના ખરી છે।
બરાબર,
પ્રત્યક્ષ યોગ છે ને એ તો જ્યાં અંદરમાં પોતાને સૂઝ નથી આવતી એની હિંટ મળવા પૂરતો જ એનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, પછી કાર્ય તો સ્વયંથી થાય છે અંદર
એકદમ,
કેમ કે કોઈ સત્પુરુષ કોઈ મુમુક્ષુની સમક્ષ 24 કલાક તો બેસતા નથી, સંભવ પણ નથી, એ સંભવ પણ નથી, કેમ કે ઉદય તો બધાને જુદા જુદા હોય, એક ઉદય હોય તો પછી કામ કઈ એને કારણે અટકે એવું તો ન હોય,
એવો કોઈ નિયમ નથી.
હા, એટલે
પણ
પછી એનું પરોક્ષ પણ કેટલા અંતરમાં છે એના ડિસ્ટન્સ સાથે સંબંધ નથી કે ભાઈ 50 ફૂટ દૂર છે કે 50 માઇલ દૂર છે કે 500 માઇલ દૂર છે, એની સાથેનો
સંબંધ.
હું તો અંદરમાં જે કામ કરવું છે એના માટેની જે એનું માટેનું જે માર્ગદર્શન છે એની હિંટ મેળવવા પૂરતું જ પ્રત્યક્ષ યોગ નિમિત્ત નૈમિત સંબંધ છે. કામ તો અંદરમાં પોતાને જ કરવાનું છે.
ગ્રહણ કેટલી તીવ્રતા પૂર્વક કર્યું છે એના ઉપર વધારે ડિપેન્ડ. તો એનું માપ કેવી રીતે નીકળે કે ભાઈ આ જે ગ્રહણ
તો શું છે કે કોઈને તો તરત જ કરંટ લાગે છે, કોઈને કોઈ વિશેષ અંદરનો અવરોધ કોઈ હોય, પોતાના જ પરિણામોનો પ્રતિબંધ હોય, એ હટ્યા પછી એની વાત જો ઝીલાય છે તો એનો કરંટ ચાલુ થાય છે. બધી વખત એક સરખી સ્થિતિ નથી હોતી જીવની યોગ્યતાની. યોગ્યતા યોગ્યતા સમય સમયની યોગ્યતા છે, જીવના પરિણામની પણ સમય સમયની યોગ્યતા છે. તો જ્યારે માર્ગદર્શન પ્રત્યક્ષ મળે છે ત્યારે કોઈ એવા પ્રતિબંધક ભાવોને લઈને સાથ તરત જ ચાલુ ન થાય. પણ યોગ્યતાવશ એ જે પકડાણું હોય, ગ્રહણ થયો હોય, સ્વીકાર થયો હોય અને એના એનો પ્રયાસ ચાલુ થયો હોય તો પ્રતિબંધક ભાવ દૂર થયે પછી વિશેષપણે તીવ્રતા આવે કામ થાય.
એ વખતે એના પકડમાં તો આવી જાય ને કે આ મારા પ્રતિબંધક કારણ અત્યારે નડે છે,
એ અવલોકનનો વિષય છે. એ તો સ્વયંના અવલોકનનો વિષય છે.
તો ત્યાં પકડાય કે અવરોધક અહીંયા મને અવરોધ છે
અવલોકન તો પોતાનું અંતર ખોજ, અંતર અવલોકન અને અંતર પુરુષાર્થ આ બધું એક સાથે ચાલવું જોઈએ અને પછી કામ થાય છે. ન થાય એવું કાંઈ નથી. દર્શન પરિષદ થોડોક વિશેષ તીવ્ર પણ થાય કેમ કે અવરોધક પ્રતિબંધક ભાવોને બાળવાનું એક જ સાધન છે. એ સિવાય પૂર્વના કરેલા પ્રતિબંધક ભાવરૂપ યોગ્યતા એનું નિવારણ બીજી રીતે શક્ય નથી.
શક્ય
નથી આવતું કે જ્ઞાની પ્રતિક્રમણ કરે છે, જ્ઞાની આલોચના કરે છે અને જ્ઞાની પછખાણ કરે છે. ત્રણ પ્રકાર શા માટે આવ્યા છે? પૂર્વે કરેલા ભાવોનું પ્રતિક્રમણ, પછી એ પ્રતિક્રમણ પશ્ચાતાપરૂપ હોય છે, એ પ્રતિક્રમણ પરિસરરૂપ અજ્ઞાન અને દર્શન પરિસરરૂપ હોય છે એમ, અને વર્તમાનનું તો અવલોકન આલોચના છે, ચાલતા જ ભાવોનું છે, ભાવિ માટે દ્રઢ નિર્ધારનું પછખાણ છે. બસ દોષ ટાળવાના તો ત્રણ પ્રકાર છે જૈન દર્શન પ્રસિદ્ધ છે. વાત ઓછલી અપને ભૂતકાલ મેં ભી હમરે જીવને તો કઈ પ્રકાર કે વિરુદ્ધ પરિણામ તો ક્યા હૈ, જો હમરે આત્મકલ્યાણ સે વિરુદ્ધ હૈ એસે પરિણામ કિસે ભાવ તો ક્યા હૈ, तो ऐसे भाव करने से हमारी कुछ अयोग्यता भी बन चुकी है। अब उस अयोग्यता के वश वर्तमान में हमें बोध मिलने पर हमारा आत्मकल्याण नहीं हो रहा है तो क्या करें, ये प्रश्न चलता था। इसके लिए क्या होना चाहिए? तो उसके लिए जो दर्शन परिषका मैंने अपना पश्चाताप का जो भी प्रकार आता है वो इनके लिए वो योग्यता को टालने के लिए यही एक ही साधन है। जैसे वर्तमान में आलोचना, भविष्य में प्रत्याख्यान, तो भूतकाल के लिए प्रतिक्रमण इसको बोलते हैं, पश्चाताप भी बोलते हैं, प्रतिक्रमण भी बोलते हैं। या अपने वर्तमान में काम नहीं होता है तो उसका खेद जिसको कहते हैं, वो खेद रूप भी होता है जिसको दर्शन परिसर, ज्ञान परिसर कहते हैं। ऐसे प्रकार के परिणाम होते हैं।
खेद चाहे चाहे ना परिसर, खेद चाहे चाहे ना परिसर,
विज्ञान परिषद ने दर्शन परिषद पत्रा भी प्रश्न डालते हैं। एक मुमुक्षु की भूमिका माँ आ एक प्रकार माथे पसार थाय छे जी, पछी ज्ञान दशा आवे छे। वो तो अपने को पता ही नहीं होगा। भूतकाल में जो परिणाम हो गए हैं उसकी तो स्मृति भी नहीं हो सकती है, नहीं होती भी है, लेकिन वर्तमान में यथार्थ निमित्त मिल गया, यथार्थ बोध मिल गया, यथार्थ सब बात वर्तमान में यथार्थ हो फिर हमारा काम क्यों नहीं होगा? कि हमारी योग्यता नहीं है। तो योग्यता में तो अब तो हम ग्रहण करने के लिए तैयार हुए, फिर क्यों नहीं हमारा काम होता है, सवाल ये पैदा होता है। तो कुछ न कुछ अयोग्यता मौजूद है, कुछ न कुछ रूप में हमारी अयोग्यता मौजूद है, इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। ये बात तो पक्के होगी, इसमें तो कोई शंका का स्थान नहीं रहता, निशंक बात है। अब वो कैसे मिटे ये सवाल होता है। तो उसके लिए जिसको काम नहीं होता है उसको उसका खेद होगा ही होगा। अगर परिणाम की स्मृति हो तो पश्चाताप हो, लेकिन परिणाम की स्मृति नहीं हो तो क्या हो, तो उसको खेद होगा। उसको जो खेद होगा उसी को ही परिसर कहते हैं, अज्ञान परिसर, दर्शन परिसर। जो ज्ञान मिटता नहीं है और दर्शन मिटता नहीं है इसलिए उसको परीक्षा कहते हैं। ऐसी भूमिका में से हमेशा मुमुक्षु जीव जब गुजरता है तब उनकी विशुद्धि होती है, और विशुद्धि होने से वो आगे बढ़ने के लिए उसका ज्ञान और विधि दोनों फिर काम करने लगता है। तो काम करने लगता है। इस वक्त प्रत्येक सत्पुरुष चाहिए तो ही वो काम चले, ऐसा नहीं है। जब ये गल जाएगी अयोग्यता, तो जो ग्रहण किया है उसका बल आ जाएगा। वो बल नहीं आने देते थे, वो आने लगेगा।